कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामुकुन्दाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरे ते। हा देवी का तू हर गजब दया राजा अंगश्यामलिखटाधिरभितो मंदे कृतेन्द्रियगणं जटुञ्जाकुटरोषसंपिदतंगपट्टम्बरस्य वृंदारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोऽजलधियं ज्ञायेन दाहं भक्त्या विहीनाय पराकलक्ष्यै क्षिप्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणानि। गौरचंद्राय राधिकायतराय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति सम्यक्तया करवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां तुष्टिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च सन्ततो जयन्ति। एकादश स्कंद को भी समाप्त किया, द्वादश स्कंद की कथाएं हो। द्वादश स्कंद में बहुत से उपदेशपूर्ण बातें इस प्रकार से कलयुग में अधर्म प्रवेश करता है। इस प्रकार से समस्त दोषों का आदर होने पर भी कलयुग एक दृष्टि से और तीन युगों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और सब युगों में भगवान के लिए साधन भजन करना बड़ा दुष्कर होता है, कठोर तपस्या करने पर। और कलयुग में केवल नाम मात्र के जीवा के स्पर्श से ही मिलती है क्योंकि और किसी भी साधन से नहीं संपन्न। भागवत का महत्व इसमें वर्णन किया गया। सुखदेव गोस्वामी जी एकादश स्कंद की कथाओं को वर्णन करके द्वादश तक की और परीक्षित महाराज को सुना करके फिर वो चल दी। और किस प्रकार से परीक्षित महाराज जी संसार से चित्त को हटा करके और भगवत भक्ति में अपने आत्मा को प्रयुक्त कर दिया। एक तरह से वो समाधिस्थ हो गए, शरीर से आत्मा को भी उठा लिया और प्रभु के चरणों में लगा दिया। इस प्रकार से सब तक्षक ने उनको दशा उनके सुस्त शरीर इत्यादि का वर्णन इसमें आया। और भी ये सब बातें आज आप हम अभी आरंभ करेंगे। एकादश स्कंद का मूल सार है जो दशम स्कंद में जो जो लीलाओं का वर्णन हुआ उनमें गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ बताया। पंचाध्यायी को पंच प्राण क्योंकि गोपियों से संबंधित है। भ्रमर गीत इत्यादि वेणु गीत इन सब भागवत का सार है। ये रागात्मिक लोगों के लिए कृष्ण के जो अपने परिकर हैं उन लोगों के लिए ही संभव है, इसलिए उनको रागात्मिक कृष्ण के परिकर उनको कहा जाता है। अब उस चीज को पाने के लिए जिनके हृदय में लोभ होगा, जब गोपियों जैसी यशोदा जैसी नंदबाबा जैसी सखाओं जैसी हम कृष्ण की सेवा को पा सकें इसके लिए साधन करना होगा। वो साधन क्या है वो एकादश स्कंद में बताया और क्रम से बतलाया गया। भयं द्वितीया देवर अभिनिवेश तस्या ईशात अपेतस्य विपत्यो स्मृति तन्माया तो आत्मा भजे सप्तैक जेषां भूदेवता। भागवत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। जीव भगवान को विस्मरण हुआ उसकी बुद्धि में विपर्य आया, भगवान के चरणों की सेवा में है और वो आ गई संसार और माया ने झट उसी समय उसको पकड़ लिया। तन माया तो तन माने भगवान की माया के द्वारा वो पकड़ लिया, पकड़ करके भगवान से दूर फेंक दिया इस जगत में। इसलिए ये व्यक्ति पीछे पाप नहीं कर सकती, उसको भगवान से दूर कर दिया। और एक आवरणात्मक शक्ति है जीव के स्वरूप को ढक दिया, इसलिए अपनी आत्मा को भी नहीं देख रहा है, भगवान को भी नहीं देख रहा है, उनकी सेवा इत्यादि कुछ भी नहीं देख रहा। ये दो शक्तियां जो है आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका ये महामाया के प्रकाश हैं। उन्हीं के द्वारा ये जीव संसार द्वारा पाता है कोटि कोटि जन्मों से। यदि बाई चांस इसमें रहते रहते संत पुरुषों का संग हो जाए, संत माने कल बतलाया एकादश स्कंद में उसके लक्षण, भगवान के प्रति प्रीति हो, वैष्णव के प्रति सख्त भाव युक्त सेवा मैत्री और दूसरों पर कृपा, ये तीन प्रकार की वैष्णव का। उत्तम वैष्णव भगवान के प्रति प्रेम करेगा, उत्तम वैष्णव के प्रति सेवा तो उनका संग करेगा से, और अपने बराबर वालों के प्रति मैत्री भाव, और अपने से जो कनिष्ठ है उनको अपना संग देकर के उनको ऊपर में दया करेगा। इस तरह से उनके लक्षण बतलाए गए जिनकी जैसी श्रद्धा, उत्तम कोटि की श्रद्धा होने से उत्तम अधिकार, मध्यम कोटि की श्रद्धा होने से मध्यम अधिकार और कनिष्ठ श्रद्धा होने से कनिष्ठ। उत्तम भक्तों का संग करने से ही माया को सहज ही पार हुआ जाएगा। इसलिए गुरु और वैष्णव जो उत्तम नहीं तो मध्यम में भी उत्तम ऐसे वैष्णवों का संग हम लोगों को करना चाहिए। तो होगा क्या, उनके द्वारा गुरु हम प्राप्त करेंगे, पहले वो निर्देश करेंगे ये गुरु, हम गुरु को नहीं पहचान सकते। साधुओं के बतलाए हुए लक्षण के द्वारा हम निरीक्षित करेंगे और उनके बतलाए हुए मार्गदर्शन से हम गुरु को चयन करेंगे, ये हमारे उनके विचारों को देखेंगे। नाम में रुचि है कि नहीं, समस्त शास्त्रों को पढ़ लिए हैं और कंठस्थ है वेद उपनिषद भागवत पुराण रामायण, हम देखेंगे कि जो कहते हैं आचरण करते हैं कि नहीं भागवत के अनुसार। यदि नहीं करते, समस्त शास्त्र जानने वाले परम विरक्त सब कुछ है तो उनको गुरु नहीं करेंगे। वेद वेदांत उपनिषद सब याद नहीं है उनको, किंतु सिद्धांत में परिपक्व है और भगवान के भजन में नाम कीर्तन में विशेष करके उनकी रुचि है, राधा कृष्ण में उनकी रुचि है सेवा, तो उनको हम चाहे किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शुद्ध जी कहा जो जय कृष्ण पत्वेता श्री गुरु, ऐसे गुरु का उपदेश मान करके उनकी सेवा करते हुए उनके उपदेश अनुसार में चलते हुए भगवान की सेवा करते। और वो भी सेवा कैसे, जैसे वो बतलाएंगे भागवत में लिखा गया है, भागवत धर्म के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सप्तापि इस नौधा विधि से, और उसमें भी हरिनाम संकीर्तन के ऊपर में मुख्य और सब करने पर भी जिनका हरिनाम में रुचि है ऐसे गुरु के पास में जाएंगे, हम भी ऐसा साधन करेंगे जिसमें हरिनाम ही मुख्य हो। पहले श्रवण करेंगे भगवान के लीला का प्राण पोषित, और फिर उसमें प्रतिष्ठित होंगे और फिर उन्हीं लीलाओं का स्मरण करेंगे, जीवा को लगाएंगे भगवान के नाम कीर्तन में, मन को और हृदय को लगाएंगे कहां उन लीला कथाओं के स्मरण, रहेंगे कहां वृंदावन में, यदि वृंदावन में शरीर के द्वारा नहीं रह सकते तो मन के द्वारा भी वहीं रहो, संसार में आसक्ति होने से नहीं हो, संसार में रहने के लिए जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है वैसे रहना तब तो होगा, नहीं तो इधर भी उलझे हुए हैं उधर भी, ये ऐसा नहीं, आज नकल छोड़ना ही हो। ऐसा करने से, भगवान की भक्ति करने से साजी में हम लोग भगवान को प्राप्त, यही समस्त का सार। उसके लिए दिखलाया नौ जोगेंद्र और नबी महाराज का संवाद, नौ प्रश्न के नौ का उन्हें, इसके बाद में दिखलाया कृष्ण ने उद्धव जी को अपने स्वलोक गमन से पूर्व जो बातें बतलाई थी उसको उद्धव संवाद कहते हैं। वो उद्धव संवाद में भगवान ने साधु भजन के लिए सब प्रकार की जो बातें आवश्यक है सब कुछ उन्होंने बतलाया, इसलिए उस बात हम लोग ग्रहण करके चाहिए। उसमें भी नाम संकीर्तन के ऊपर में विशेष जोर दिया है, उसके साथ विशेष करके बतलाया दत्तात्रेय जी का उपाख्यान कृष्ण ने बताया उद्धव जी को, जिसमें 24 गुरु उन्होंने किए, मुख्य गुरु एक शिक्षा गुरु, किंतु देखो भेद नहीं रखना चाहिए, वैष्णवता के तात्पर्य पर गुरु को भी निर्भर करता है। जब मैं जानता हूं कि हमारे गुरु कनिष्ठ अधिकारी हैं और उत्तम वैष्णव का संग मिला तो हम क्या करेंगे, गुरु से भी कम उत्तम अधिकारी को समझेंगे, हमारा समझ में क्या कर रहा है, हमारे गुरु मान लिया कि जैसे कनिष्ठ अधिकारी हमने कर रहा है और उत्तम वैष्णव का संग यदि संत कोई मिल रहे तो अपने गुरु को उस उत्तम अधिकारी संत से भी अधिक ऊंचा समझेंगे ना क्या करेंगे, कल्पना करेंगे ये हमारे गुरुदेव परम भागवत मुक्त पुरुष भगवान के प्रकाश में साक्षात हरि क्या करें, और उत्तम वैष्णव जो है पहले इनको अधिक देकर के फिर उनको करेंगे अवज्ञान हो जाए, इन सब विषय में विचार करके चलना चाहिए। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने 24 अब उनके ग्रुप कोई तो जरूर होंगे जिन्होंने दीक्षा दी होगी, किंतु हवा को, आकाश को, वृक्ष को, सर्प को, कुरवी पक्षी को, वेश्या को, राजकुमारी को, इत्यादि सबको 24 गुरु बनाए और उनसे एक एक बात की शिक्षा दी। पेड़ों के समान सही सुर होना चाहिए, पेड़ों को गुरु बनाए, छाया देता है, धूप से रक्षा करता है, हवन के लिए लकड़ी देता है, पलंग के लिए लकड़ी देता है, उसके पेड़ छाल डालियां पत्ते फल सबसे उपकार करता है। और ये नहीं कहता कि हमको काटो मत, हमको पानी दो, कुछ नहीं मांगो, वैष्णव होकर के ऐसे ही निराभिमान और सही सुन। ये उनसे शिक्षा अजगर से उन्होंने ली शिक्षा। अजगर करे न चाकरी, वो चाकरी नहीं करता, नौकरी नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहा, बस सांस लिया, उस सांस में यदि दो चार आ गए, कोई फंस गए तो ठीक है, नहीं तो पड़ा। ऐसे ही साधु संत लोग अधिक खाने पीने भोग विलास की चीजों को संग्रह में नहीं रहेंगे, इसे उन्होंने सीखा। कलराज कुमारी की बात सुना, घर में विवाह देने के लिए लोग आए हैं, पक्का करने के लिए संबंध, लड़की के माता पिता नहीं है, केवल लड़की, चावल नहीं था और उनको खिलाना जरूरी है, तो वो चावल भान फूटने लगे, तो हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी, जब उसने चलाया तब तो चूड़ियां झन झन करके बज उठी, ऐसे तब तो हमारा विवाह कट जाएगा, माता पिता बहुत चिंता हुई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारी सगाई ठीक की। नहीं कहें, नहीं तो कहेंगे इसे घर में चावल का दाना भी नहीं है, इस गरीब दरिद्र घर की लड़की से क्या शादी करें। तो उसकी 5-6 चूड़ियां थी, तो एक को निकाल दिया, फिर जहां किया तब फिर झन शब्द, फिर एक को निकाल दिया, करते 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 जब दो रह गई तो भी जब टाटा तो दोनों में झन झन, उन्होंने एक को भी निकाल दिया, एक रह गई तो भी हिल रही है ना, तो उसको ऊपर चढ़ा लिया यहाँ पर, जैसे कि वो तनिक हिले डुले नहीं और काम कर लिया। यहाँ पर यह बतलाया गया, भजन दो प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों के साथ में रहने से नहीं होगा, एक चल रहा है पश्चिम, एक चल रहा है पूरब, और वो लोग भजन करे, कहा जाए हम दुर्गा जी को मानते हैं, और एक कहता है हम मैं शंकर जी को, और उसका एक भैया कहता है नहीं हम कृष्ण को मानेंगे, इस तरह से परस्पर छन जाए, कोई कहता है हम प्याज खाएंगे, कोई कहता है हम, इस तरह से उन लोगों के साथ में रहने से भजन होगा, उसको सब समय गड़बड़ी होगी, इसलिए निर्जन के लिए कहा, निर्जन मित्र। निर्जन का मतलब ये नहीं समझो कि अकेले कीर्तन करने का ही नाम या रहने का नाम निर्जन, एक भाव संपन्न युक्त 1,00,000 व्यक्ति भी यदि रह करके भजन करते हैं तो उसका नाम है निर्जन, एक तरह का। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर 200, 400, 500 आदमी एकत्रित हैं, यहाँ हम प्रवचन करते हैं, कोई भी शब्द नहीं करता, सबको अपने एक भाव में ले, ये निर्जन है, कोई शब्द होता है कुछ, लड़ाई झगड़ा कोई करते हैं ठीक, उस प्रकार से अभी भीतर में भाव अलग अलग है, ये बात ठीक है, व्यक्ति जब ऐसे ही एक तरह के भाव वाले व्यक्ति एक जगह में रख करके भगवान की कथाओं को श्रवण करें, कीर्तन करें, इसको गोष्ठानंदी कहते हैं, ऐसे लोग एक साथ में रख करके, यदि आप अकेले हैं भजन कर रहे हैं और आपका मन बहुत भागों में बटा हुआ है, विषयों में फंसा है, भगवान को भी चाहते हैं, तो ये निर्जन हुआ कि नहीं हुआ, विचार करो, अकेले ही बैठे हैं एक जगह भजन करना चाहते हैं, मन कहता है ये विषय ले आओ, ये विषय ले आओ, उससे प्रेम करो, उससे रुपया पैसा लाना है, उसको खूब खिलाओ पिलाओ, उसका भी ले आओ, किसी से झगड़ा हो गया, किसी का सब तरह से चित्त चंचल होकर के इधर उधर चल रहा है, और बैठे हरे कृष्ण कर, आंख बंद है, लोग में बहुत समाधि में है, किंतु समाधि में है ना कि उनके धूप में 50 फुट बैठे हैं, वो निर्जनता नहीं है। इसलिए जिसका चित्त संपूर्ण रूप से समर्पित है, और ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी हो, तीसरा भी हो, यदि 10-20 हजार भी हो जाए तो कोई बात नहीं, एक भाव किंतु ऐसा। मान लें कि हम एक गुरु के शिष्य भी हैं, 10 आदमी 20 आदमी हैं, जरूरी है कि सबका भाव एक तरह का होगा? कोई जरूरी नहीं। कोई गतिपति पर से उठेगा, कोई राधानुगा की शरण में जाएगा, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कीर्तन प्रधान होगा, कोई श्रवण प्रधान होगा, कोई कुछ होगा, तो उनमें भी परस्पर लड़ाई छन न जाए। ये सब का विचार करते हुए स्वजाति स्निग्ध आशय वैष्णवों का संग करते हुए भजन करने का नाम निर्जन भजन आया। संकुट है कुछ स्वजाति आशय स्निग्ध आशय आसन है जो भावना है, मूल है हृदय अंतःकरण का जो भाव है, जैसे राधा कृष्ण के हम किस भाव से भजन करना चाहते हैं, एक समान स्वजातीय होना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूं मैं राधा जी की, अब उसी आशय का दूसरा कोई एक होगा ना, तीसरा चौथा पांचवा, तो एक आशय के रह करके हम लोग को एक ही तरह की सुनने की लालसा होगी। एक नाम जब प्रहलाद महाराज जी का चरित्र होना चाहिए, बुरा है क्या? बुरा तो नहीं, कहे हमको तो भाई ये अच्छा नहीं, हमको तो वो गोपियों संबंधित कोई बात हमको सुनने की इच्छा। अब लग गई ना बात, एक ही गुरु के शिष्य हैं, सब कुछ है, किंतु स्वजातीय आशय स्निग्ध नहीं हुआ। इसलिए एक तरह का आशय वाला, एक तरह का हृदय वाला व्यक्ति यदि 20-25-30 भी हो तो वो निर्जन, अकेले रहते हुए भी जब भजन कर रहे हैं तो वो निर्जन नहीं भी है, मन के संकल्प विकल्प इधर उधर सब चल रहे हैं। इसलिए मन को स्थिर रह करके एकाग्र चित्त से एक समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ में, और वो भी हमसे उन्नत होना चाहिए, हमारे जैसे 10-20 होने से वो नहीं होगा, वो जो जिसका हम संग कर रहे हैं हमसे उन्नत और एक ही तरह का होना चाहिए, ये भजन के लिए कहा। ऐसा भजन करना ही निर्जन भजन, अन्यथा अकेले रह करके भी वो निर्जन। समय उपदेश दिए गए हैं, हम लोग बारीकी से इनको सुनेंगे, पढ़ने से नहीं होगा, हम लाख वर्ष में पढ़ेंगे चीजों को नहीं समझेंगे, और जो लोग व्यक्ति इसको श्रवण किए हैं गुरुमुख से और साधन भजन करके इसकी उपलब्धि की है, वो रियलाइज सोल हैं, उनके साथ में बैठ करके सुने पहले, तब हृदय में उन चीजों को था, अन्यथा स्थूल भावना होगी। फिर हम कीर्तन करेंगे और फिर उसी का स्मरण करते हुए सहज रूप में, मैं समझता हूं कि जितने प्रकार के साधु हैं, जितने प्रकार के विश्व में साधु अपने संप्रदाय में भी दूसरे संप्रदाय आदर को करेंगे, किंतु चैतन्य महाप्रभु उनके अनुगत स्वरूप दामोदर रावण, उनके अनुगत रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी इत्यादि के विचार जिनके हृदय में है और उनके अनुसार में जो भजन करते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना सबसे सुंदर मंत्र है, यही हमारे लिए काम। यदि यह हो गया तो हम सब कुछ हमने इस जीवन में दिखता है। यही एक आदर्श संग का साथ जो कुछ मैंने समझा है आप लोग से मिले, इसको समझ करके वैसे ही आप लोग अनुसरण करने की चेष्टा। अब हम लोग द्वादश स्कंद की कथाएं अब हम लोग आरंभ, इसके बाद में जब हो जाएगा ये कथा हो जाएगी, इसके बाद में हम लोग भागवत की आरती उतारेंगे, पुष्पांजलि देंगे, इसके बाद में हवन इत्यादि का कार्य होगा, और सब जो कार्यक्रम है वो निर्धारित होगा। आप लोग अब भागवत की कथा आप सब फिर माइक दे दो।
तो कोई नहीं। काफी এখনই তো প্রায় হাট পেয়ে গেল
श्रीमती राधिका का नाम हरा और